आप सबका स्वागत है। धन्यवाद करते हैं गौरंगा प्रभु और परिवार का जो आज रविवार के सत्संग का यहाँ आयोजन किया है। हरे कृष्ण नमो कृष्ण प्रभु। सो आज वैसे गत 4-5 दिन से श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 9वें अध्याय के ऊपर चर्चा चल रही है, लेकिन आज विशेष दिन है। एक बहुत बड़े वैष्णव आचार्य का तिरुभाव तिथि है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में निकटतम समय में बलदेव विद्याभूषण के बाद 300 साल की अवधि के 2-2.5 साल में बहुत अधिक शास्त्रज्ञ विद्वान जिनके द्वारा बहुत सारे प्रकाशित पुस्तक और कविताएं लिखी गई वो भक्ति विनोद ठाकुर हैं। भक्ति विनोद ठाकुर की जीवन से केवल हम इतना सीखने का प्रयास करेंगे कि वो महात्मा ग्रस्त थे। ये एक आचार्य हैं हमारे जो ग्रस्त हैं, इसलिए कोई ग्रस्त ये नहीं कह सकता कि हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। और ये ऐसे ग्रस्त महात्मा हैं जिनके 10 बच्चे थे। आप में से किसी के 5 बच्चे हो तो हाथ ऊपर करो। मैं नहीं करूंगा, मैं 5 से ऊपर हूं। आप 5, हम 6। देखो हम 2 ही आदमी बच्चे हैं पुराने, बाकी सब बेकार। 10 बच्चे थे उनके, लेकिन 10 बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दी थी। और गवर्नमेंट के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के जज थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो सरकार का काम भी करते थे, 10 बच्चे भी पालते थे और शाम को प्रचार करने गांव-गांव में जाते थे। और उनके 150 से अधिक नाम हटते जिनको वो जाके खुद देखते थे। तो अब सिर्फ यहाँ हमको सीखने के लिए ये आवश्यक है कि गृहस्थी नौकरी करता हुआ धंधा करता हुआ और अच्छे बड़े परिवार को पालता हुआ भगवान का शुद्ध भक्त हो सकता है। कोई भी बहाना बनाने से भक्ति न करना ये हमारी बेईमानी है। इनके जीवन से ये सीखने को मिलता है, बिल्कुल साफ मिलता है। इतने बड़े परिवार की देखभाल भी की, गवर्नमेंट की ऐसी नौकरी की कि गवर्नमेंट इतनी उनके ऊपर राजी थी कि जब उनकी नौकरी कृष्ण नगर में हुई तो उनकी इच्छा हुई कि मैं नवद्वीप में रहूँगा। तो गवर्नमेंट ने स्पेशल रेलवे लाइन बनाई कृष्ण नगर से उनके घर तक, ताकि वो टाइम से अपने काम पे आए। लाइन बनी हुई है, वो गवर्नमेंट ने सिर्फ रेलवे लाइन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके घर तक बनाई। तो और फिर वो 40 साल के बाद उम्र के बाद उन्होंने देखा कि ये अंग्रेज और जर्मन में मैक्स मुलर ने बहुत कुछ लिखा है, तो जर्मन और अंग्रेज भारतीय संस्कृति और भारतीय सिद्धांतों को पहले तो मनोकल्पनिक मानते हैं, उसके बाद इसको दंत कथा मानते हैं और हमारा उपहास करते हैं, लेकिन उसको ठीक तरह से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर को ये पाश्चात्य विद्वानों का राय सनातन संस्कृति के प्रति अच्छी नहीं लगी। वो इसका खोज करते हुए 10-40 साल के बाद उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को ठीक तरह से अध्ययन किया तो फिर उन्होंने भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति के सिद्धांत को पूरे विश्व तक पहुंचाने के लिए पहली बार 1896 में अंग्रेजी में पुस्तक लिखी, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं, लाइफ एंड परसेप्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु, और दुनिया के सारे विश्वविद्यालयों में भेजी 1896 में। उसी साल में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की क्या इच्छा थी भगवान जाने, लेकिन जिस साल में वो अंग्रेजी पुस्तक पाश्चात्य देश में गई उसी साल में मेरा जन्म हुआ था। और फिर उसी पुस्तक के पीछे प्रभुपाद जी ने जाके विश्व भर में जो है वो कृष्ण भक्ति का सनातन धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया। तो ये एक ऐसे महात्मा का तिरुभाव तिथि है जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उनकी शिक्षा का एक भजन अभी गाया था, उसका भाव देख लीजिए। दारा पुत्र निज देह कुटुंब पालने, हाँ, सर्वदा व्याकुल अमी किछु छिन्न मने मने, मैं अपनी पत्नी बच्चे शरीर तथा अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की देखभाल करने में पूर्ण पूर्ण रूपेण तलीन था। ये हमारे सबके लिए ठीक लगता है कि नहीं? सही सब है। हम क्या करते हैं? पत्नी बच्चे शरीर और फिर और जो व्यवहार के संसार के कार्य है पूर्ण रूप से उसमें लगे हुए थे। इस प्रकार के विचार में मेरे मन में सदैव मेरा मेरे मन में सदैव रहते थे। क्या ऐसे विचार मेरे मन में सदैव रहते थे? हर एक आदमी का मन, हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारे मन में विचार क्या है? भाई घर परिवार कैसे चलेगा, पैसा कैसे कमाएंगे, मित्र बंधु, और आगे क्या सोचते हैं? के मैं ना अर्जे वे अर्थ यश कैसे पावा, कन्या पुत्र विवाह के मैं न संपादिव। और मेरा विचार क्या होता था? मैं सदैव धन अर्जित करने के विषय में, यश एवं कीर्ति अर्जित करने के विषय में तथा किस विधि से अपने पुत्रियों तथा पुत्रों का विवाह किया जाए इस विषय में सोचता रहता था। क्यों भाई, ठीक लगता है कि नहीं? धन कैसे कमाएंगे, मेरा यश कैसे होगा, लोग मेरे को पहचानेंगे कैसे, फिर मेरे बेटी बेटियों का विवाह कैसे होगा, यही मेरा चिंतन था सारा जीवन। ये कौन कह रहा है? ये वो महात्मा कह रहा है जो जज था, जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये पहले महात्मा था जिसने भारत में अंग्रेजी इंग्लिश इंग्लिश मीडियम को शुरू किया कि अगर ब्रिटिश के राज में रहना है अंग्रेज में तो अंग्रेजी सीखना जरूरी है, उनकी भाषा में उससे बात करेंगे तब समझ में आएगा। तो उन्होंने पहली बार अंग्रेजी मीडियम को स्वीकार किया ओडिशा और बंगाल के अंदर। वो महात्मा अन्य बहुत से स्थानों के ऊपर पहले विद्या क्षेत्र में रहे, एजुकेशन में, और बाद में जो है वो इसमें जज बने तो चले गए थे न्यायालय में। तो उनका कहना है कि ये दो प्रकार के मेरे मन के विचार थे। देख लीजिए विचार हम सबके ऐसे हैं कि नहीं है। अब वो हमको एक सलाह दे रहे हैं। ए बे आत्म समर्पण चिंता नहीं आर, तुम्हें निर्वाय बे प्रभु संसार तुम्हार। अब चूंकि मैंने आपके चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, मुझे किसी भी विषय की चिंता की आवश्यकता नहीं रही। ये आपका परिवार है, अतः निश्चय ही आप इसकी चिंता करेंगे। अब देखो, एक मिनट में जान छूट गई सारी परेशानी की। ये महात्मा के जीवन का अनुभव बता रहा है। एक बड़ा परिवार पालने वाला और एक एक दायित्व निभाने वाला व्यक्ति, जो समाज के अंदर जिसका बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। उस वक्त में कलकत्ते के पेपर ने लिखा था कि कल केदार बाबू, उनका नाम था केदारनाथ, कल केदार बाबू घर घर में रुपया रुपया लेने आएंगे, मंदिर बनाना है, कोई उनको ना ना करे। ऐसा अखबार ने लिखा था कि केदार बाबू, ये काम अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, भगवान की सेवा के लिए करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, घर घर में जाऊंगा। तो पेपर में लिखा था, इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति था। वो कहता है, मैंने अभी तक तो ऐसे सोचा था, लेकिन आज मैंने अपने आप को भगवान के अर्पण कर दिया है, अब चिंता भगवान करेगा, मेरी चिंता आज से दूर हो गई। कितना सरल उपाय है, केवल ये कहना है कि भगवान, ये परिवार तेरा, ये घर तेरा, संभालना तेरे को। ये मंदिर घर में बनाते क्यों, इसका अर्थ क्या है? किसी ने हमसे पूछा कि घर में मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? हमने बोला घर में बड़े बुजुर्ग के होने की जरूरत क्या है? बड़ा बुजुर्ग घर में होता है तो आपको घर की चिंता नहीं होती। चिंता होती है घर की, बड़ा बुजुर्ग है तो घर की चिंता नहीं है। और मर्यादा घर में रहती है, मर्यादाएं रहती है। अब घर में भगवान को रखने का मतलब घर का मालिक आप हो। जब बाहर जाना है प्रणाम करें, बोला हम जा रहे हैं आपका काम करने के लिए, शाम को आओ तो रिपोर्ट दे दो, आज ये काम आपका हुआ, ये काम नहीं हुआ, कल आप जैसे चाहो वैसे काम अपना कराना। तो घर में भगवान को बिठाने का मतलब घर का मालिक वो है, हम तो हैं उसकी सेवा में। अब हमारे भी चिंता काय के लिए करनी? भाई बैंक में जो काम कर रहा है कैशियर, उसको ये चिंता है कि आज कितना जमा हुआ या कितना निकला। जमा हो तो जमा हो, निकले तो निकले, जिसका है वो चिंता करेगा, हमको काय की चिंता करनी, हमारी तनख्वाह मिलेगी। तो ये जो भाव है, आज भगवान मैंने सब कुछ आपको अर्पण कर दिया, अब आप जैसे चलाओगे मुझे मालूम है, वैसे भी आपसे भगवान में बुद्धि ज्यादा है, अच्छा ही चलाएगा, आपकी बुद्धि से वो बहुत अच्छा चलाएगा, ये जरा सोच लो। किसी ने एक बार कहा था, भगवान मेरी बेटी का विवाह करा दो, तो कहा 5,000 रुपये दे। भगवान हंसने का, मूर्ख तू मेरे को बोलता है विवाह करना, 5,000 में करूँगा मैं भिखारी हूँगा, मैं विवाह कराऊंगा तो 5 लाख वाला कराऊंगा, तुम्हारे कहने के ऊपर थोड़ी कराऊंगा। अब जब तुमने मुझे ही कहा है तो मैं मेरे स्तर की करूंगा ना, व्यवस्था करूंगा। वो नरसिंह मेहता की तो आपके गुजरात में बात चलती है, वो नरसिंह मेहता की बेटी की बेटी, हाँ तो उसका मामा बना नरसिंह बाबा, नरसिंह नाना बना, तो मामे को देना पड़ता है, तो देने के लिए मैं तो नहीं दूंगा, अभी सावल सा सेठ देगा। अब देने के लिए जब द्वारकाधीश रो रुक्मणी आई लक्ष्मी, तो कोई कमी देगी क्या? वो तो हीरे मोती देने आई, इसके बाद चने पर देने को नहीं थे। तो भगवान जब करेगा तो कोई कमी होगी क्या? अब ये बुद्धिमानी का काम है कि हम अपनी बुद्धि से करना चाहते हैं। आगे क्या कहते हैं कि आज से मेरी ये चिंता समाप्त होगी, क्योंकि मैंने ये सारा आपको अर्पण कर लिया, अब ये घर ही परिवार आपका है। हमने कई बार आपको एक कथा बताई होगी, संत किसी के घर में आया, घर बहुत अच्छा दिखा, महाराज ने पूछा बाप का बड़ा अच्छा बंगला है, बड़ा अच्छा कोठी बनाई है। उसने बोला महाराज मेरी नहीं है, मैं आया था तब यहाँ मेरे पास कुछ नहीं था, ये तो भगवान की कृपा है, आप संतों की कृपा से जो बन गई वो आपकी है, हमारी नहीं। अंदर फर्नीचर फिक्स्चर बोला ये सब, बोला ये सब आपका दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं था। बच्चे खेल रहे थे, बोला ये भी बोला भगवान की देन है, हमारी नहीं, हम तो इनकी सेवा कर रहे हैं। पर एक छोटा सा मंदिर अंदर बना हुआ था भगवान का, बोला ये मेरा है, भगवान मेरा है, बाकी सब कुछ भगवान का है। बस इतनी सी बुद्धि को थोड़ा सा जो फेर लेता है कि सब कुछ भगवान का है और भगवान मेरा है, तो भगवान के साथ सब कुछ आपका हो गया ना। पहले आप भगवान से अलग करके सब अपना मानते, ये गलती। जब भगवान से अलग करके सब कुछ अपना मानते हैं तो हम चोर हो जाते हैं, अपराधी हो जाते हैं, वो हमारी गलती है, इसलिए इस दुनिया में हम दुखी होते हैं। भगवान का मानकर भगवान को अपना माने तो अपना ही हो गया ना सारा। तो केवल यहाँ ये इक्वेशन हमारे जो गणित में गलती होती है कि भगवान को बाहर निकाल के हम अपना मानते हैं, भगवान के साथ अपना मानने में जीवन सफल। भगवान हमारा है तो सब कुछ भगवान का है, भगवान हमारा है तो सब कुछ हमारा है, लेकिन मालिक भगवान है, हम उसका सेवक हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर की बड़ी अद्भुत शिक्षा है। आगे कहते हैं हे प्रभु अपना दास समझकर कृपया मेरी निर्वाह कीजिए, अब आप मेरा देखभाल कीजिए। कहाँ हम कल नहीं परसों नौजवान लड़कों का एक क्लास था मूर्तिमान के ग्रुप में, 90 अच्छे लड़के थे। मैंने बोला प्रोफेशन आपका बहुत सारे, कुछ लोग कहते हैं हम MBA करेंगे, बीवी तो 35 साल तक मिलती नहीं है, MBA करते रहते हैं, MBA करते हैं बीवी नहीं शादी 35 साल के बाद MBA हो जाएगा, फिर BBA MBA BBA नहीं, तो काय के लिए तुम्हारे पढ़ने की ज़रूरत है, 35 साल तक शादी नहीं करते आजकल के नौजवान के, अभी पढ़ रहा हूँ मैं तो कब तुम शादी करेंगे। तो उनको मैं कह रहा था भाई एक प्रोफेशन और भी है उसका ध्यान दो। प्रोफेशन का अर्थ ये नहीं होता है पैसा कमाना, प्रोफेशन का अर्थ होता है जीवन समर्पण करना। एक प्रोफेशन भगवान की सेवा करने का भी है, धर्म प्रचार करने का भी है। आप इसका ये मत पूछना लाभ क्या है। मैंने बोला लाभ मैं आपको बताता हूँ। मैंने बोला आज मैंने पहली बार किसी ने मुझे कहा और मैंने सुना कि दाल 80 रुपया किलो है, मेरे को आज तक भी 8 रुपया किलो याद है जब मैं लिया करता था आज से 30 साल पहले। उसके बाद मेरे को पता भी नहीं है क्या भाव बाजार में किस चीज़ का है, सब चीज़ अपने आप सब चीज़ें मिल रही हैं, तो मैं काय के लिए चिंता करूं? मैं क्यों चिंता करूं, सब चीज़ें अपने आप मिल रही हैं और किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती नहीं है, उससे पहले अपने आप मिलती है। मैंने बोला रोज़ नई गाड़ी में मैं चढ़ता हूं, खरीदी आज तक एक नहीं है, लेकिन कौन सा मॉडल आप बोलो उसमें मैं नहीं चढ़ा हूं। और रोज़ सुबह एक आती है, शाम को दूसरी और दोपहर को तीसरी आती है, तीन तीन गाड़ियाँ रोज़ मेरे को ड्राइवर के साथ आती है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बोला अब मुझे कोई कमी है क्या, रोज नई गाड़ी में रोज नया आदमी लेने आता है और रोज नया आदमी खिला रहा है और मुझे मार्केट के किसी रेट की जरूरत नहीं है, ऐसा प्रोफेशन को आपको क्यों नहीं अपना लेते हैं? भगवान का सेवा तो करनी, तो देखभाल करता है कि नहीं करता है, कर रहा है ना, हम देख रहे हैं कर रहे हैं, हम आंखों के सामने देख रहे हैं। ये कोई ये जो जो भक्ति विनोद ने अपने अनुभव से लिखा है, कोई अनपढ़ जाहिल आदमी लिखता तो हम शायद उसके ऊपर विश्वास न भी करते, लेकिन एक ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति ये जीवन का अपना कहानी लिख रहा है कि अब आप हमारा निर्वाह कीजिए, इतना कह के तो देखो कि भगवान आप हमारा निर्वाह करके, हम मैं करता हूँ ये सोचते हुए अटके हुए हैं इस दुनिया के अंदर। तो ये बहुत बड़ा, और ये इतना सत्य हमारे जीवन में, उसमें साल में 3 लाख से ऊपर सिर्फ ट्रैवलिंग का मैं देखता हूँ, कभी टिकट तो मेरा 3 लाख से ऊपर खर्चा है साल का, केवल केवल ट्रैवलिंग का। लेकिन हमको आज तक पता नहीं कि कहाँ से आता है, कौन देता है, कौन लेता है, हमें आज से देखा नहीं, अभी भी किसी ने टिकट दिया है यहाँ से जाने का, इसमें पड़ा है टिकट लाया है और कल वहाँ जाऊँगा तो उधर से कोई दूसरा दे देगा, हमें कुछ करना नहीं है। कुछ भी नहीं करना, टिकट पहले आता है उसके बाद हम कहीं जाते हैं, जिसको निकालना है दूसरा टिकट देता, नहीं तो बैठे हमारे को क्या करना है। अब तो आपको चिंता है भगवान, भगवान के ऊपर इतना विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जो कर लेता है उसको फिर कोई चिंता नहीं। कहते प्रभुपाद जी यहाँ से जब गए थे तो 40 रुपया जो ले गए थे ना, वो 40 रुपया वहाँ तो एक्सचेंज हुए ही नहीं। जब वापस पहली बार आए ना दिल्ली में, तो टैक्सी वाले ने बातें करते हुए सुना प्रभुपाद को पीछे कि मैं जो यहाँ से ले गया था पैसे अभी मेरे पास पड़े हैं टैक्सी को किराए देने के लिए, 40 से 40 ही पड़े हैं ऐसे कुछ कहा। टैक्सी वाले ने सुन लिया वो, तो किराया 30 होता तो बोला 40 दो, सरदार जी था बोला 40 पूरा लूँगा, प्रभुपाद का 30 बोला नहीं 40 लूँगा। सरदार कहता मुझे मालूम है 30 में क्या कुछ भी नहीं देता इनसे, लेकिन ये महाराज के पैसे मेरे को लेने थे। वो सरदार दिल्ली में उन पैसों को अभी मढ़ के रखा है, वो पैसे प्रभुपाद के एक बहुत सुंदर चित्र में मढ़ के रखे हुए हैं। आज वो बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर है, उस वक्त टैक्सी चलाता था। तो कहते ये पैसे संत के हैं, मैंने इसको संभाल के रखे, ये जबरदस्ती संत है ज़्यादा। लेकिन कहते मैंने आपको बताया था कहीं पहले, बनिए को नींबू को और संत को निचोड़ोगे तो रस निकलेगा। जितना निचोड़ोगे उतना ज़्यादा रस मिलेगा। तो महाराज से उन्होंने पैसा ज़्यादा तो ले लिया, लेकिन पैसे को अभी तक उसने संभाल के रखा हुआ है। तो ये कि एक बार भगवान को जिसने अपना जीवन अर्पण कर दिया, उसको फिर कहता है अब ये चिंता भगवान आपको करनी है, हे प्रभु अपना दास समझकर कृपया मेरा निर्वाह कीजिए, मुझे आपके चरण कमलों की सेवा करने में असीम आनंद का अनुभव होता है। ये दूसरी लाइन है, जब तक ये नहीं होगी तब तक सेवा भगवान नहीं करेंगे। मुझे आपकी सेवा में आनंद आ रहा है तो भगवान कहता है मुझे तेरी सेवा में आनंद रहा है। हमको भगवान की सेवा में आनंद नहीं आता है तो भगवान को हमारी सेवा करने की इच्छा ही नहीं होती है। तो ये जो पीछे वाली लाइन है, भगवान हमको आपकी सेवा करने में आनंद आता है, अथवा हम हरे कृष्णा जप रहे हैं तो हमको रस मिल रहा है, हमारा टाइम पास कर रहे हैं, जान कैसे छूटे तो भगवान कहते हैं इससे मेरी जान कब छूटे। तो बिल्कुल ऐसा है, ये यथा माम प्रपद्यते, अगर हमको आनंद आता है भगवान की सेवा करने में तो भगवान को हमारी सेवा करने में आनंद आता है। भगवान सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये चैतन्य चरितमृत कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण और नहीं काज, भगवान के पास और कोई काम नहीं है, भक्त वांछा पूरी करे यही एक कृत्य। केवल भगवान भक्त की इच्छा पूर्ण करने के इंतजार में होता है कि मेरा भक्त कब कहे। वृंदावन में जाते हैं गोवर्धन के परिक्रमा में, वो राधा कुंड और श्याम कुंड दो बने हुए स्थान है बहुत सुंदर, आजकल तो उसको बहुत सुंदर और बना दिया है इस वक्त सरकार ने, बहुत अच्छा ग्रेनाइट आदि लगा के साफ करके, लेकिन वो खड्डे थे खेत के अंदर। एक महात्मा वहाँ बैठे हुए मन में विचार आया कि ये तो राधा कुंड, राधा रानी जितनी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है इतना प्रिय है, इसका हालत ऐसा पड़ा है, इस हालत में एक खड्डा है खेत के अंदर, इसको जीर्णोद्धार हो तो अच्छा हो। फिर विचार किया कि मैं तो यहाँ भजन करने के लिए आया हूँ, ये कौन झंझट पालेगा। एक आदमी का इच्छा पूरी हुई थी, बद्रीनाथ गया पैदल, उस जमाने में पैदल लोग जाते थे, ये 200 साल पुरानी बात है, पैदल गया बद्रीनाथ में, जाके रात को सोया, भगवान बद्रीनाथ नर नारायण उठाया, बोला उठो वापस जाओ, ये जो तुम धन मुझे देने के लिए आए हो ना इसको ले जाओ, और वहाँ राधा कुंड में एक महात्मा रहता है उसका नाम है दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके चरणों में जाके अर्पण करो। वो बेचारा वहाँ से एक महीना पैदल चल के वापस वृंदावन में आया, ढूंढने लगा रघुनाथ दास गोस्वामी, जब मिला बोला ये बद्रीनारायण में गया था मैं, भगवान ने पैसे भेजे, वो पैसे से फिर उसने वो राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण कराया। तो भगवान को चिंता होती है, भक्त ने केवल इच्छा की तो भगवान ने उसकी चिंता की, उसको पूरा कर दिया। तो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मुझे आपकी सेवा में आनंद आ रहा है, अब मुझे निश्चित है कि आप मेरी सेवा करोगे। हे प्रभु सब कुछ आपकी इच्छा से क्रियावंत होता है, पर मूर्ख जीव कहता है कि वो सब कुछ कर रहा है, हालांकि ये सत्य नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, ये सबके लिए है। तुम्हारी इच्छा है प्रभु सब कार्य है, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ भगवान होता है। जीव बोले करी अमी से तो सत्य नहीं, आदमी कहता है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं जो आदमी कहता है ये सत्य नहीं है। प्रहलाद महाराज ने इसके ऊपर श्रीमद् भागवत में कहे कि अति प्रयास मत करो भाइयों। क्यों? बोले जो तुमने कमा के रखा है कर्मों का वो तो तुमको मिलना ही है। बोले फिर क्या मेहनत करेंगे, उसके बगैर कैसे मिलेगा? प्रहलाद कहता है कोई दुख के लिए मेहनत करता है क्या? कोई बीमारी के लिए मंदिर में प्रार्थना करने जाता है कि हमारे को टीबी कैंसर मिलना चाहिए? कोई गया है आज तक? कोई कहीं प्रार्थना करे मंदिर में गया है कि मेरे को दुख मिले? नहीं। मैं प्रहलाद कहता है फिर सबको दुख आता है कि नहीं आता है? दुनिया में सबको दुख भोगना पड़ता है कि नहीं भोगता है? पड़ता है ना, बगैर मांगे के आता है ना। तो वो भी तुम्हारे अपने कर्मों का कमाया हुआ है, तुम्हारे दरवाजे के ऊपर समय के ऊपर आता है, तुमको भोगना पड़ता है। बोला ये तो बात सत्य है। बोला ठीक, ऐसे ही जो सुख भी है तुम्हारे अपने कमाए हुए हैं, अपने आप आ जाते हैं। तुम समझते हो मैंने कमाए? हम समझते हैं कि हमने कमाए हैं, लेकिन ये हमारे अपने पहले से पड़े हैं जो हमको भगवान समय के ऊपर दे देते हैं। और ये तो कई आपको ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण ऐसे मिलेंगे। कुछ भी पैसा नहीं था, बैठा था, वो तो हमारा एक भक्त ऐसे इच्छा, मुझे एक दिन कह रहा था हमारा घर बनाने की इच्छा है, वृंदावन में रहना है, लेकिन पैसा तो है नहीं। जवानी से पहले ही भक्ति में आ गए थे हम, जवानी से पहले भक्ति में आए थे, इतना कमाया तो नहीं है, दो टाइम ही रोटी मंदिर दे रहा है, इससे काम चल रहा है। तब कहीं से बैंक से फ़ोन आता है कि आपके दादा ने कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखे थे और वो इतने बढ़े हैं कि अब हमको हिसाब नहीं होता है, आप आके ले जाओ। वो जाके फिर दो तीन महीना चक्कर लगाया, उसने ये बताया कि मेरा दादा था, उसको दादे का नाम आता था इसलिए उसका काम हो गया, हमारा अब काम उसमें भी नहीं हो पाएगा। उसको दादे के नाम का पता लगा और जाके वो लुधियाना की बैंक से पैसा निकाले गया। वो तो पेरेंट्स उनके चले गए थे, फिर नैरोबी आदि वो इंग्लैंड, वो तो महामन प्रभु के वहाँ पेरेंट्स का पैसे वहाँ से मिले, फिर वो वृंदावन में उन्होंने घर बनाए। तो ये केवल पहले से सब कुछ रखा हुआ है कहीं, लेकिन जब आपका काम ठीक विश्वास होता है तब अपने आप खड्डे से बाल मार निकल आता है। हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, ये सत्य नहीं है। ये कह रहे ये सत्य नहीं है। आप दो दुकान आप मार्केट में जाके देखो, वही चीज़ें दोनों दुकान पे हैं, वही रेट है, लेकिन एक शाम को लाख रुपया लेता है, एक के 10,000 नहीं आता है। क्यों? जब चीज़ एक ही है, रेट एक ही है, तो एक ज़्यादा कमाता है, दूसरा कम क्यों कमाता है? व्यवहार भी कम कमाने वाले का अच्छा है, क्यों? कम कमाने वाला ज़्यादा आदमी को जरा इज्जत देगा, ज़्यादा वाला बोलेगा खड़े रहो ऐसे बोलेगा, लेकिन फिर क्यों ज़्यादा क्यों कमा रहा है? कारण क्या? कौन निर्णय करता है? आदमी करता है, तो एक ही चीज़ है ना, बराबर कमाना चाहिए, बराबर क्यों नहीं कमाता? तो लोग कहते हैं कि मैं करता हूं, ये सत्य नहीं है। आप सब कुछ करते हो, यदि आप उसे प्रेरणा न दें तो जीव कर ही क्या सकता है? वैसे हम सबको प्रेरणा कौन देता है? किसी को प्रेरणा? आप सोचते हो रात को कि कल मैं ये कारोबार करूंगा, ये प्रेरणा कहां से आई भाई? कौन ये प्रेरणा हमको देता है? अब ये तो भक्ति विनोद ठाकुर का भाव ये है कि आप अगर प्रेरणा दें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आप प्रेरणा देते हैं तब जीव कुछ करता है। जीवात्मा मात्र इच्छा ही कर सकता है, ये शब्द यहां है, जीव की कीर्ति परे तुम ही करे, आशा मात्र जीव करे। आप केवल इच्छा कर सकते हो, हमको इच्छा करने का अधिकार है और इच्छा करना सीखना चाहिए। क्या इच्छा हमको करनी चाहिए ये हमको सीखना चाहिए, क्या इच्छा करनी चाहिए। आप समझ लो कि आपके जीवन का एक ही पाठ आपको याद करना है पूरे जीवन में कि हम क्या इच्छा करें। लर्न टू डिज़ायर, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन डिज़ायर। जो कुछ आप हैं अपनी इच्छाओं के कारण हैं, और जो आप बनना चाहते हैं वो भी आपके इच्छा के ऊपर निर्भर है। इसलिए आप क्या चाहते हैं वो आपकी इच्छा अगर जब होगी तब वो पूरी होगी। तो इच्छा हमारी क्या है? प्रायः हमारी इच्छा यही है जो पहले दो लाइनें हैं कि मेरा, मैं अपना पत्नी बच्चे शरीर तथा अपने पारिवारिक सदस्यों के देखभाल करने में परिपूर्ण रूप से तल्लीन था, और मेरा सदैव धन अर्जन करना और मैं लोगों में मेरी कीर्ति कैसे हो इसके बीच में विचार था, और मेरे बेटे बेटियों का विवाह क्यों कैसे होगा यही मेरा चिंतन था। अभी तक यही आशा थी तो ये पूरी हो रही थी। अब मेरी आशा ये हो गई कि भगवान मैं आपके चरणों में और आप मेरा सारा काम कीजिए। हम कितना परिश्रम करके घर पालते हैं और भगवान ये पूरा भूमंड पाल रहे हैं, उनको कोई परिश्रम, वो सोया हुआ है, शांताकारम भुजक्षण, वो सोया हुआ है, आंखें बंद करके सोया हुआ है। भगवान सोए हुए हैं और आंखें भी आधी बंद पड़ी है तब भी दुनिया चल रही है। उनको हमारे घर चलाने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। कहते एक आदमी कोई एक राई किसी को दान देनी पड़े को तो परेशानी होगी क्या? आपके घर कोई कहे कि एक राई का दाना मुझे दान दो, मस्टर्ड सीड, कोई परेशानी होगी क्या? हाँ, किसी घर में से राई का दाना देने में कोई परेशानी है क्या? ये सारे ब्रह्मांड भगवान की मुट्ठी के अंदर राई के दानों के बराबर हैं। वो एक राई का दाना दे के एक पूरा ब्रह्मांड दे उसके बराबर है, लेकिन उसको उसकी परवाह नहीं। एक राई का दाना गया तो क्या फर्क पड़ता है? तो क्या आपका छोटा सा घर पालने में उसको कोई परेशानी हो जाएगी क्या? ये हमारे दो दो बाल रोज गिरते हैं परिवार चलाने में, भगवान के बाल अभी काले ऐसे के ऐसे पड़े हैं, किसी में कोई फर्क नहीं आया और सारी दुनिया चला रहा है, तीन लोक चला रहा है। कोई उसको चिंता है क्या दुनिया चलाने की? कोई चिंता नहीं, फिर भी वो खेल रहा है। चिंता चलाने वाला काम भी दे दिया, बाबा विष्णु तुम चलाने का काम करो, जरा ज्यादा शरारत करने शंकर बाबा नाचना ऐसा कि सबका समाप्त हो जाए, कम प्रलय कर देना, कोई बात नहीं। उसको इतनी चिंता है हमारे चलाने की कि चला रहा है, और जब उनका मन करता है तो ऐसे जैसे बच्चे जाते हैं समुद्र के किनारे घर बनाते हैं मिट्टी का, ये मेरा घर है, अब बुलाओगे तो आएगा नहीं, मैं मेरे घर में बैठा हूँ, और थोड़ी देर के बाद उसी को लात मारेगा, बोलता चलो, अपने लात से तोड़ता है घर को। देखा है बच्चों को? भगवान भी इस दुनिया को ऐसे ही बनाते हैं, और लात मारनी होती है तब लात मारते हैं, तो कोई उसकी चिंता नहीं है, उतना ही पूर्ण वैराग्य और त्याग भी उतना ही है। तो यहाँ ये बहुत है कि आशा कैसी करनी चाहिए, आपकी इच्छा क्या होनी चाहिए। अब आपने एक दिन अपनी इच्छाओं की लिस्ट लंबी बनाओ कि मेरी क्या इच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इच्छा यही करेगा, लंबे से लंबी इच्छा, पहला आदमी करेगा मेरे को घर होना चाहिए, ये गाड़ी होनी चाहिए, ये इच्छा हो गई, फिर कुछ बैंक बैलेंस होना है, ये इच्छा पूरी होगी, फिर क्या इच्छा हो गई, फिर मेरा समाज में प्रतिष्ठा होनी चाहिए, ये इच्छा पूरी हो गई, फिर मैं मंत्री बन जाऊँ, ये इच्छा पूरी हो गई, चलो फिर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, इसके बाद इच्छा क्या करोगे? अब इच्छा आखिर आगे चलो ना, आगे इच्छा करो, मैं ये बनूँ, उसके बाद आप इच्छा करो ना करो, उसके बाद लिखा है मरना पड़ेगा। मैं ये बनूँगा, मैं ये बनूँगा, मैं घर बनाऊँगा, दुकान बनाऊँगा, मकान बनाऊँगा, बैंक बैलेंस, गाड़ी आ गई, सब आ गई, फिर मरना पड़ेगा। उसके बाद क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद तो टाइम पूरा हुआ, जो टाइम पूरा हुआ ये हमारे को दिखाई नहीं देता है कि हम जो इच्छा, तो इच्छा क्या करनी चाहिए कि मरने से पहले मैं भगवान आप सब आपको देख लूँ और आपसे मेरा संबंध स्थापित हो जाए। और ये बात भागवत में भीष्म देव कह रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा चल रही है तीन दिन से कि इच्छा क्या करनी चाहिए, हमें क्या इच्छा करनी चाहिए, ये आप सोच लो। ये अच्छी इच्छा है कि भगवान हम आपकी सेवा में, आप हमारे छोटे से परिवार का देखभाल कर रहे हो, बहुत सरल काम है कि नहीं? बहुत सरल काम है ना। हम सुबह से शाम अपने परिवार को इतना परेशान है कि भगवान की ध्यान ही नहीं कर सकते हैं। हम भगवान के ध्यान में कहाँ, एक मुझे ड्रामा करके दिखा रहे थे भक्त एक जगह पे, एक ब्राह्मण था बेचारा, आवश्यकता जरा कमाने की थी, धंधा करने की थी, घर तो चलाना ही है, तो किसी के घर में रसोई बहुत अच्छी बनाता था, तो राजा के घर में रसोईया बना, लेकिन शर्त इसके ऊपर के रविवार के दिन मैं भोजन बनाने नहीं आऊँगा, क्योंकि उस दिन मेरे भगवान का मेरे को पूजा करनी होती है, अभिषेक करना है, स्नान करना है, और उस दिन मैं नहीं आऊँगा, बाकी सब दिन मैं सेवा करूँगा। एक दिन महारानी के वह मेहमान बहुत आ गए, मेहमान भी राजा के घर में, राजा ही मेहमान आए, जाओ रसोइयों को बुलाया, महाराज को भोजन बनाना है। महाराज ने कहा मैंने तो पहले कहा हुआ है कि संडे के दिन मैं भगवान की सेवा में आपकी सेवा में नहीं चलूंगा। महारानी ने बोला है, बोला नहीं जाऊंगा। वो बुलाने वाला गया, नहीं आया, और इधर इधर मेहमानों के लिए बहुत सुंदर भोजन बन गया। मेहमान भोजन खाने के बाद इतने प्रसन्न हो गए, महारानी ये तो आपका रसोईया बहुत अच्छा है। दूसरे दिन रसोईया आया तो महारानी ने उनको सोने का हार दे रही है, बोला कल का आपका प्रसाद इतना अच्छा बनाया आपने, भोजन हमारे सारे मेहमान कुछ हो गए, बोले मैं तो कल आया नहीं था। बोला तुम कैसे नहीं आए थे, तुम तो भोजन बना लिया तुमने सारा, ये देखो ये तुम्हारा भोजन, ये तुम्हारा, सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। वो जो बुलाने गया था वो बोलता है मैंने मेरे को बोला नहीं आऊँगा, ये कैसे आ गया? अब ये बैठ के देखता है मैं आया नहीं, भोजन बनाया किसने? तब इसको ये समझ में आया कि मैं भगवान की सेवा में लगा, भगवान मेरी सेवा में यहाँ लगा, ये तो भगवान का बनाया हुआ भोजन उन्होंने खाया, भाग्यशाली तो ये हुए। लेकिन उसने बोला आज से मेरी नौकरी की छुट्टी करो, मेरी गलती की वजह भगवान को इतनी बड़ी सेवा करनी पड़ गई आप। अब मैं जब जब मेरे लिए इतना काम कर सकता है, क्या मेरा घर नहीं चला सकता? राजा के मेहमानों को खिला सकता है क्या? मेरे गरीब को नहीं खिला सकता है दो टाइम क्या? जो राजा के मेहमानों को खिला सकता है वो मेरे को दो टाइम नहीं खिला सकता है क्या? उसका विश्वास पक्का हुआ, बोला आज के बाद हम अब आने भगवान तो 24 घंटा तुम्हारी सेवा में, वो 24 घंटा भगवान की सेवा में है। और फिर उसको किस चीज़ की कमी थोड़ी है भगवान के पास। एक बार भगवान को जिसने अपने आप को अर्पण कर दिया तो फिर उसको किसी और चीज़ की आवश्यकता थोड़ी है। ये बहुत अद्भुत अनुभव और शिक्षा, सुंदर शिक्षा भक्ति विनोद ठाकुर दे रहे हैं। जीव केवल इच्छा ही तो कर सकता है, लेकिन आप ही सबकी इच्छाएं अनादि काल से पूर्ण करते आ रहे हो। भगवान सबकी इच्छाएं अनादि काल से पूर्ण, हो सकता है आपकी इस जन्म की इच्छा अभी पूरी नहीं हो, लेकिन दूसरे जन्म में पूरी हो जाती है, दूसरे जन्म तो तीसरे जन्म में, लेकिन भगवान हमारी इच्छाएं अनादि काल से पूरी करता आ रहा है। इसलिए इच्छा ऐसी करो जिसमें भगवान ही मिल जाए, ये एक इच्छा करना सीख लो। इच्छा करना सीखनी हो तो अर्जुन से इच्छा करना सीखो। गया दुर्योधन भी कृष्ण के पास द्वार का था और गया अर्जुन भी था। अर्जुन ने कृष्ण को मान लिया और दुर्योधन को सेना मिल गई। युद्ध में आवश्यकता सेना की थी, लेकिन अर्जुन ने सेना को छोड़कर कृष्ण को मान लिया था और परिणाम ये हुआ कि अर्जुन विजयी हुआ क्योंकि कृष्ण उसके साथ था। और दुर्योधन चतुरंगनी सेना ले जाने के बाद भी सब कुछ हार गया। तो लेना किसको चाहिए? भगवान को चुन लेना चाहिए। भगवान से तो लेते 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 हमारा जीवन, कई जीवन बीत गए। भगवान तो देता ही है, लेकिन भगवान कहता है मुझे तो कोई नहीं मांग रहा है, मुझसे मांग रहे हैं। मुझसे मांगने वाले मांगते रहते, भिखारी रहेंगे हमेशा, लेकिन जो मुझको मांग लेता है फिर उसको कभी और मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भगवान को मांग लेता है उसको फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान से मांगने वाला सारी उम्र मांगता रहेगा। वैसे भी देने वाला एक भगवान है, बाकी दुनिया में सभी मांगने वाले हैं। एक बार शहंशाह अकबर कहीं भटक गया था, अकेला साथियों से अलग हो गया, भूखा प्यासा था। किसी किसान ने उसको कोई साग, जो भी सूखी सी रोटी थी, किसान के पास तो सूखी रोटी थी, वो कोई ज्वार की चावल की कोई रोटी होगी और की दे दी और पानी पिला दिया। लेकिन भूखे को तो वो रोटी भी अमृत लगता है, भूखा हो आदमी तो कुछ भी खा सकता है। तो शहंशाह अकबर ने कहा, बहुत मेरा तुमने आज जीवन बचा दिया है, कभी तुम्हें आवश्यकता पड़े तो जरूर मेरे पास आना। अकाल हुआ एक बार, बेचारा अपने गाँव से आया कि शहंशाह अकबर के पास जाता हूँ सहायता लेने के लिए। अकबर तो हाथी के ऊपर जा रहा था महाराज, तो पीछे से बोला हे अकबर। तो लोगों ने कहा ये अकबर कौन बुला रहा है इसको, ये तो इसको तो, लेकिन तो सिपाही सिपाही पकड़ने लगे। लेकिन राजा बड़े बुद्धिमान हुआ करते, नहीं तो राज ऐसे, राजा में भगवान की शक्ति का आवेश होता है तब राज मिलता है, ऐसे साधारण तो राज नहीं मिलता है। ऐसे भी मैंने कहीं लिखा हुआ पढ़ा है, अकबर ने किसी पंडित से पूछा था कि मेरे को इतना बड़ा पद कैसे मिला, और फिर मैं आप तो पंडित से पूछा तो उसे बोला फिर मैं मुसलमान के रूप में कैसे आया। तो उसने वो ज्योतिष से कहा कि तुम कुरुक्षेत्र के अंदर तुम्हारा खेत में खड़े थे, और जहाँ तुम खड़े थे उसके नीचे कोई बेल गड़ा हुआ था, और कुरुक्षेत्र में तुम्हारे हाथ से किसी को तुमने दान दिया था, वो भी लोहे का दाती थी काटने की, तुम्हारे पास और कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ का दिए हुए दान के फल में तुम्हें राज मिला, लेकिन नीचे उस स्थान के ऊपर बेल गड़ा हुआ था, इसलिए तुम्हारा जन्म जो है वो मुस्लिम कुल में हुआ। ये किसी काशी के पंडित ने उनकी जो जीवन की कथा बताई थी। तो आज अकबर ने पीछे देखा, मुड़ के बोला इसको आने लेके आओ स्वागत के साथ, इसने मेरी जान बचाई थी। रात को उसको शहशाही मेहमान बनाया। ये भी तो गांव का था, गांव के लोग 4 बजे उठा करते थे पुराने ज़माने में, शहर के लोग 7 बजे के बाद उठते हैं, गांव के लोग 4 बजे के बाद सोने चले। क्यों? क्यों? वो छत के ऊपर सोते थे और छत के ऊपर 4 बजे मक्खी आना शुरू हो जाती है। घंटी उनको तब कोई ज़रूरत नहीं थी आपके अलार्म क्लाक की। मुर्गा अपने आप 4 बजे बोलता था बाहर, मोर 3:30 बजे बोलता है, हर एक अपना टाइम है उठने का, और वो अपने कोई खर्चा नहीं, सेल डालने की जरूरत नहीं, घड़ी में उठाने का बिल्कुल नेचुरल सिस्टम पहले ज़माने में था। बाहर सोने वाला खटिया बंद करके नीचे आएगा ना, ऊपर थोड़ी बिस्तर रख के आएगा। तो खटिया सबकी दिन में खड़ी होती थी पुराने ज़माने में, दिन में किसी घर में खटिया अगर पड़ी होती थी तो पूछते इनके घर में कोई बीमार है क्या, दिन में खटिया बिछाई हुई है। अब तो सारे ही बीमार है, सबके पलंग पड़े हैं फिक्स है। तो ये तो बीमार की निशानी है असल में, ये बीमार की पहचान है। नहीं तो घर में खटिया बिछी हुई का मतलब दिन में आदमी कोई बीमार होगा, नहीं तो दिन में खटिया तो खड़ी होनी चाहिए, बिस्तर गोल होना चाहिए। और खटिया जब जब बिस्तर गोल होता था, खटिया खड़ी होती थी, सारे घर की सफाई होती थी। अब सिर्फ आगे की सफाई होती, सारा कचरा उसके नीचे होता, सारा कचरा सफाई वाली कोई बाहर कचरा नहीं, कभी कचरा बाहर ले जाते देखा है,
पलंग के नीचे, कोई देखेगा नहीं पढ़ा रहे।
हरे कृष्ण। तो 4 बजे उठ गया, ये उठ गया, उठ गया तो इसने अपनी प्रार्थना वार्थना जो करनी थी की, तो देखा अकबर भी उठ के सुबह सुबह हाथ ऐसे करके खड़ा है, नमाज पढ़ रहे। अकबर को जो नमाज पढ़ते हुए देखा, तो ये उसको देखा आश्चर्यचकित हो गया। अब नाश्ते के समय बुलाया, नाश्ता, बोला नाश्ता बाद में करूंगा, लेकिन आप क्या कर रहे थे सुबह उठ के महाराज? बोला मैं भगवान से दुआ मांग रहा था, भगवान से दुआ मांग रहा था, भगवान से बोला मैं अभी जा रहा हूँ वापस। तो बोला तुम आए हो तो तुम कुछ जरूर, तुम्हारे वहाँ अकाल पड़ा है, तुम कुछ मांगने आए थे, कुछ लेके जाना चाहिए। बोला नहीं बस मैं जा रहा हूँ। बोला जा क्यों रहे हो? बोला तुम ही मांग रहे थे ना उससे, तो तुम ही जिससे मांग रहे थे उसी से मैं जाके मांगू? तुम ही भिखारी, मैं ही भिखारी धोलू, फिर तुमसे मैं मांग के क्या करूँ? फिर तुम्हारे से मांगने से मुझे क्या जरूरत है? जब तुम ही स्वभाव उसी से मांग रहे थे, मैं उसी से मांग लूंगा जाके। और वह चला गया, उसको इसका विश्वास, तुम भी तो मांग ही रहे थे ना, तो फिर तुमसे मैं काहे के लिए मांगू फिर? तो इस दुनिया में देने वाला कोई नहीं है, एक भगवान सबको दे रहा है, देने वाला एक भगवान है। बरसात अपने समय पे आती है, लेकिन भगवान की कृपा हर वक्त बरसती रहती है और सदा सबको देता रहता है। लेकिन कोई लेने वाला बुद्धिमान हो, कृपा तो बरसती है लेकिन बाहर निकल के उसको हाथ में लेने का हमको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो अपने आप अंदर सूरज तो उगता है सुबह, लेकिन आप कमरे में पर्दा सुबह खींचने का प्रयास करोगे तो अंदर रोशनी कहाँ से आएगी? हमने तो ऐसा अंधारा घर में करना, अंधारे का मतलब है अंधकार में रहना चाहते हैं, अंधकार का मतलब अज्ञान में रहना चाहते हैं। हमने प्रयास ये किया है कि चारों ओर से कितना हम अंधेरे में रह सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि काम ही सारा अंधेरे का है ना। बाप ने, बेटे ने बाप से पूछा कि अपना ये धन दौलत कारोबार कैसा है? बाप ने लाइटें बंद कर दी, दरवाज़ा बंद कर दिया। बोला बताओ ना। बोला समझ नहीं रहे हो। बोला क्या है? बोला देखो क्या है। बोला ये तो ब्लैक है। बोला तो यही तो काम है अपना। तो ये अंधकार से यही प्रणाम निकलता है कि हम अंधेरे में ही रहना चाहते हैं, हम प्रकाश में जीना ही नहीं चाहते। फिर रात को अपने आप अंधेरा होता है, तब तो कोई जरूरत नहीं अंधेरा का प्रयास करने की। तो ये बड़ा आश्चर्य है। अब भक्तिविनोद ठाकुर जी आगे कहते हैं, मैं निश्चिंत होकर आपकी सेवा करूंगा, यदि मेरे घर में कोई दुर्घटना घट जाती है तो इसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानूंगा। तो इसका मतलब तुम जिम्मेदार हो। अगर ये मैं तो हूं आपकी सेवा में, अगर मेरे घर में कोई कमी पेशी हो गई तो मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूं, क्योंकि मैं तो तुम्हारी सेवा में हूं। अगर नहीं मेरा काम पूरा हुआ, इसका मतलब तुमने अपना काम ठीक नहीं किया। अब भगवान को ऐसा बांध दिया है, कहां जाए? अब मैं तो आपकी सेवा में लगा हूं, अब आपको मेरे घर का देखभाल में कहीं कोई त्रुटि रह गई तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। अब मैं जिम्मेवार नहीं तो कौन जिम्मेवार है भाई? लोग क्या कहेंगे? अरे भगवान का भक्त था, इसके घर में ऐसे, तो भगवान जिम्मेवार होगा ना, तो भगवान के ऊपर ये दायित्व हो गया ना। तो जो अनदेखी को देख सकता है उसको दायित्व दे दो ना। आप तो कल का भी नहीं देख सकते हो, लेकिन वो तो तीनों समय का देख सकता है, त्रिकाल दृश्य है, तो उसको दायित्व देने वाला बुद्धिमान है ना। हम अपने ऊपर सब भार उठा के घूमते हैं, हम समझते हैं हम नहीं रहेंगे तो दुनिया चलेगी नहीं। कब्रिस्तान में जितने मुर्दे गड़े हुए ना, वो जब दुनिया में रहे थे तब कह रहे थे कि हमारे बगैर ये दुनिया नहीं चलेगी। सबने ऐसे सोचा था, लेकिन सब पड़े हैं, दुनिया चल रही है, उनको मालूम नहीं है। सबने ऐसे सोचा था हमारे बगैर दुनिया चलेगी नहीं, सबने ऐसी सोचे मरे कि हम नहीं रहेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, लेकिन दुनिया पहले से ऐसी चल रही। तो ये क्या हमारे चलाने से चलेगी, ये बात मूर्खता है। अब भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, श्री भक्ति विनोद ठाकुर अपनी स्वतंत्रता को त्याग कर कहते हैं, मैं आज मैं करता हूं इस शब्द को ही मेरे डिक्शनरी से निकाल देता हूं, मैं अपनी स्वतंत्रता को आज त्याग देता हूं आपके ऐसे भक्त के रूप में जिसकी कुछ भौतिक धन संपत्ति नहीं है, आपकी सेवा में लगता हूं। मैं तो अपने आप को किसी चीज का मालिक नहीं बनता हूं, मानता हूं मैं आपका सेवक हूं। बस आज से मैं अपनी पहचान आपके सेवक के अलावा, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों के हमारे नाम भी ऐसे रखे थे पुराने, गोपाल दास, रामदास, और सारी गुरुवाणी में गुरु नानक साहब ने नानक ताको दास है, ये शब्द पूरा दास, जितना भगवान का नाम नहीं है उतना दास शब्द मिलेगा पूरी वाणी के अंदर। ये गुरु की वाणी में शब्द दास को मुख्य दिया गया है, हर शब्द हर जगह शब्द दास है, और ये शब्द कह रहा है मैं आज आपका निष्किंचन दास हूँ, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको आज स्वीकार कर लेता हूँ कि मेरी स्वतंत्रता समाप्त, आप स्वतंत्र मैं परतंत्र, अब आप मेरे को चलाइए। ये ऐसे ही है जैसे छोटा सा बेटा, उसको कहने की जरूरत नहीं है लेकिन वो माँ को कहेगा कि मैं तो आपके अधीन हूँ, जैसे आप चलाओगी सुलाओगी तो सोऊंगा, खिलाओगी तो खाऊंगा, उठाओगी तो उठूंगा। जैसे माँ बच्चे के, बच्चा के पास कुछ भी नहीं है अपना, कुछ लाता है क्या बच्चा जन्म लेके इस दुनिया में आया, कपड़ा भी लाया है क्या? नानी पहले से तैयार करके रखती है, दादी वो भी बड़ी होशियार होती है, ऐसा झबला बनाती है पता नहीं लगता है लड़के का है कि लड़की का है। वो भी बड़ा उसमें भी टेक्स्ट चलाते हैं, लेकिन पहले लोगों को मालूम था कि क्या आना है, लेकिन अब उसमें भी जो भी हो लेकिन कुछ हम लाए नहीं ना। बच्चा कुछ लाता है अपने साथ दुनिया में? कुछ नहीं लाता है। लेकिन माँ सब उसकी व्यवस्था देखती है। ऐसे जो अपने आप को निष्कंचन का मतलब उस बच्चे की तरह जो माँ के बिल्कुल आश्रित है माँ के ऊपर, ऐसे जो भक्त भगवान के ऊपर पूर्णतः आश्रित हो जाता है फिर उसको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ स्वयं रात को जागेगी लेकिन बच्चे के सोने की व्यवस्था करेगी। माँ बाहर बाहर जाएगी धूप सर के ऊपर माँ को लगेगी लेकिन बच्चे को साड़ी में ढक लेगी अपने आप। ऐसे भगवान भी अपने भक्तों के लिए उससे भी निकटतम देखभाल करने को तैयार है। लेकिन भक्ति विनोद की शिक्षा को कोई आज समझ ले कि आज तक तो मैंने सोचा था घर बार परिवार मैं चलाता हूँ, धन कैसे कमाऊंगा, मेरी प्रतिष्ठा कैसे होगी, बेटा बेटियों की शादी कैसे होगी, लेकिन आज से मैं भगवान ये सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आज से मैं आपका सेवा में लगता हूँ, अब कमी पेशी आपकी आप जानो, ये परिवार भी आपका। इतने दो शब्द कहने से हमारा सब भार उतर गया, सब टेंशन खत्म हो गई, सब दुख तकलीफ समाप्त हो गया केवल एक शब्द कहने से। और यही एक शब्द कहा था विभीषण ने जब लंका छोड़ के आया था अपने चार मंत्रियों के साथ, तो आकाश में खड़े होकर कहता राम मैं आपकी शरण में हूँ। और भगवान राम ने कहा एक बार कह दिया शरण में हूँ तो अब आप आज से आप लंकेश हो, आ लाओ जल समुद्रों का, आपको राज तिलक देते हैं, आज से आप लंका का राजा हो। अरे केवल इतना ही कह दिया विभीषण ने कि मैं आपका शरण में हूँ, और राम ने कह दिया आज से तुम लंका का राजा हो। तब सुग्रीव ने कह दिया कि अगर राम कल शरण में आएगा तो बोला अभी मेरे पास मेरा अयोध्या का राज पड़ा है उसको दे दूंगा, अयोध्या का राज अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं रावण को दे दूंगा लेकिन वो आएगा नहीं। एक केवल एक शब्द कहने से लंका का राजा, और अभी तक वो विभीषण इस धरती के ऊपर रह रहा है आज भी, और अभी तक भी उसी मूर्ति की जो भगवान ने उनको दी थी, जिसकी पूजा घर में कौशल्या करती थी भगवान विष्णु की, वो उठा के जा रहा था विभीषण, और श्रीरंगम क्षेत्र में वो ठाकुर जी वहीं बैठ गए, वहाँ से गए नहीं, तो श्रीरंगम में जो लेटे हुए भगवान विष्णु हैं ये वो मूर्ति है जिसकी पूजा कौशल्या मैया ये अयोध्या में किया करती थी, और ये उठा के विभीषण ले जा रहा था लंका। लेकिन इसलिए आज रोज़ अभी तक उसमें सुबह विभीषण रोज आता है, उसका मुख दक्षिण की तरफ है और वहाँ से आता है लंका से उसका सेवा करने के लिए। तो भगवान ने अपने आप को दे दिया विभीषण को, अभी तक भी विभीषण, और एक बार विभीषण तो रावण का भाई है, भक्त है तो भी भाई तो रावण का है ना, रावण का भाई है तो छोटा मोटा तो नहीं होगा, बहुत भारी भरकम है। एक बार सुबह सवेरे पूजा करने के लिए जा रहा था रंगा श्रीरंगम में, अचानक पाँव के नीचे ब्राह्मण आ गया, पाँव के नीचे ब्राह्मण विभीषण के आया, ऐसे लगे कि आपके पाँव के नीचे मकोड़ी आ गई। अब मकोड़ी आपके पाँव के नीचे कितनी बार आती होगी, कितनी बार हमारे पाँव से कितनी मकोड़ियाँ मर गई हमें तो पता नहीं है। वो ब्राह्मण जो उसके नीचे दब गया, सब ब्राह्मण ने पकड़ के बांध के रख दिया विभीषण को, अब वहाँ बांध के रख। ये समाचार राम जी को मिला कि विभीषण को श्रीरंगम क्षेत्र में ब्राह्मणों ने बांध के रखा है। राम जी ने एकदम भरत को कहा कि आप राज को संभालिए, अभी आपको मैं अभी राजपद दे के जाता हूँ, मैं आता हूँ कोई काम है स्पेशल, और पुष्पक विमान को बुलाया और वहाँ से सीधा श्रीरंगम क्षेत्र में आए। श्रीरंगम क्षेत्र में जैसे ही आए तो ब्राह्मण ने कहा हे राम जी आपके शरण में, हमें एक राक्षस ने एक ब्राह्मण को मार दिया है, आप उसको दंड दीजिए। बोला ले आइए उसको, लेके आए विभीषण को। तो तब राम जी कहते हैं देखिए मैंने एक नियम बना रखा है, नौकर का सेवक का गलती मालिक का गलती माना जाएगा, भृत्य या सेवक की गलती को मालिक की गलती मानी जाएगी, बेटे की गलती को बाप की गलती मानी जाएगी। तो ये मेरा सेवक है, इसको जो दंड देना है उसका दंड मेरे को दो, क्योंकि मैंने ये नेम बना रखा है। जब राम जी ने ये कहा कि इसका दंड मेरे को दो तो सब ब्राह्मण ने हाथ जोड़ा कि जैसे आप कहो। तो विभीषण को वहां से फिर स्वतंत्र करा के भेज दिया भगवान ने। तो अभी तक भगवान उसकी रक्षा करने का दायित्व तो निभा रहे हैं, केवल एक बार मुख से कह दिया था कि भगवान मैं मेरा तो मैं आपका हूं। सुकृद एवं एक बार अगर कोई कहते याचते अहम तो हम ये याचना करें कि मैं तुम्हारा हूँ तो मैं निश्चित से सब प्रकार से उसकी रक्षा करता हूँ। ये राम जी कहते हैं मेरा व्रत है, ये मैंने मेरा ये वचन दिया हुआ है, व्रत लिया हुआ है। तो ये भक्ति विनोद उसी आधार के ऊपर आज कह रहे हैं कि मैं मेरे जीवन का सारा भार आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे आपकी सेवा में आनंद आता है, अब जो कमी पेशी रहे वो आपकी मानी जाएगी, मैं स्वतंत्र निश्चित आज से मैं। असल में अपनी स्वतंत्रता भगवान को अर्पण करना ही स्वतंत्र बनने का तरीका है, बहुत अच्छा। शरणागति ही स्वतंत्रता का सरल उपाय है। हम स्वतंत्र बनने का प्रयास करते हैं, बगैर शरणागति के तो और बंधन में फंसते जाते हैं। तो आज के भक्ति विनोद ठाकुर की इन शिक्षाओं को अगर हमारे जीवन में तो कहीं हम स्थान देंगे कि भगवान को अपना मान लें और सब कुछ भगवान का मान लें और हम भगवान की सेवा में लगें तो हमारी सारी समस्याओं की देखभाल और चिंता भगवान करेगा। अर्जुन की सारी चिंताएं भगवान ने कर दी। आज का श्लोक ये था जो भागवत का हमको पढ़ना था, उसमें भीष्म पितामह कहते हैं कि श्री कृष्ण आपने अर्जुन के रथ को अपना कुटुंब मान लिया था, अपना कुटुंब मान लिया था। कुटुंब किसको कहते हैं? अपने परिवार को, जिसके पालने के लिए आदमी को सब कूट नीति के काम करने पड़ते हैं। भाई परिवार पालने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है, चोरी भी करनी पड़ती है, कुछ भी करना पड़ता है। आपको अर्जुन और अर्जुन के रथ को बचाने के लिए झूठ बोलने की जरूरत पड़ी तो आपने झूठ बोला, जहां गलत काम करना था गलत काम भी किया, आपने अर्जुन के रथ को अपना कुटुंब मान लिया था और उसकी रक्षा करने के लिए आपने जो नहीं करना चाहिए वो भी करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि आपको अर्जुन की रक्षा इतनी प्रिय थी, क्योंकि अर्जुन ने आपको चुन लिया था, उसने ये इच्छा की थी कि कृष्ण आप मेरे हो, तो आपने कहा पे आपकी रक्षा का दायित्व तो मेरे ऊपर है। तो आपने अर्जुन के रथ को अपना कुटुंब मान लिया था, इसका मतलब है उसके भरण पोषण की जवाबदारी आपने उठा ली थी, अब उसको कौन मार सकता। कुटुंब मान लिया था इसका मतलब ये भक्ति विनोद कहते हैं मैं जिसको अपना कुटुंब मान लेता हूं उसको आप अपना कुटुंब मान लीजिए, मैं आपकी सेवा में। ये तो कुटुंब ही मानने की बात हो गई। ये श्लोक जो आज हमको पढ़ने थे दो, अभी आज का मेरे ख्याल में हमको जाना है और जगह पे ना, तो हमारा समय समाप्त हो रहा है, पहुंचना भी होगा ना। एक श्लोक इससे पहले भी है, लेकिन विजय रथ कुटुंबा ततोतरे धृतहय रश्मिनि तश्रिय क्षणय भगवती रतिरस्तो मे मुमुर्षु यम ही निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम। विजय रथ कुटुंब आततो, आपने अर्जुन के रथ को अपना कुटुंब मान लिया था। कितने क्या क्या नहीं किया, कर्ण के बाण में सर्प आके बैठ गया, वो अर्जुन को मारना चाहता था। कर्ण कहना का मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपने बल से मारूंगा, लेकिन वो बाण में बैठा और बाण वो इस जगह पे अर्जुन को लगने वाला था ठीक इधर। उस वक्त कृष्ण ने घोड़ों को इतना नीचे रथ को गिराया कि अर्जुन का केवल मुकुट जाके दूर गिरा, केवल मुकुट दूर गिरा। तो वो उसकी रक्षा करने के लिए जो कुछ नहीं करना चाहिए वो भी भगवान ने किया। अर्जुन तो नहीं मारना चाह रहा था कर्ण को जब उसका रथ का पहिया फंस गया था, नहीं इस पर ये युद्ध का नियम नहीं, कृष्ण का युद्ध का नियम तो नहीं है, लेकिन अभिमन्यु को मारा वो भी युद्ध का नियम नहीं था। इसलिए जो तर्क देने थे, भगवान जो भी करता है वही ठीक होता है, लेकिन संसार की दृष्टि से वो ठीक नहीं भी लगेगा। जैसे कुटुंब पालने के लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुटुंब पालना ही आपका दायित्व है। यही तो कह रहा था वाल्मीकि जी, जब वो डाकू था तो उसको जब पूछा नारद आदि ऋषि जन ऋषियों ने कि भाई तुम ये काय के लिए मारते हो और डाका डालते हो, बोला कुटुंब पालना है। भाई कुटुंब पालने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। बोला जब कुटुंब से पूछ के आओ कि जब दंड मिलेगा तो वो इसका भाग लेंगे। तो जब घर में गया रत्नागर जाके पूछा कि मैं तो आपको खिलाता पिलाता हूँ, बोला तो आपका दायित्व है। बोला उसके लिए मैं चोरी करता हूँ, लोगों को मारता हूँ, अगर मेरे को दंड मिलेगा तो आप भोगोगे। बोला हम क्यों भोगेंगे, तुम्हारा काम है हमारा पालन पोषण करना। जब वापस आया तो कहाँ पूछा नारद जी ने, बोला बताइए। बोला वो तो नहीं भोगेंगे। बोला कुटुंब को पालने के लिए बराबर सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन कुटुंब उसको भोगने के लिए जरूर जिम्मेवार नहीं है, आप ही जिम्मेवार हो। तो असल में देखा जाए तो महाभारत युद्ध में जो कुछ भी है उसका जिम्मेवार कृष्ण है, अर्जुन नहीं है, पांडव नहीं है। और ठीक तरह भगवद गीता को देखोगे तो पांडवों की तरह कौरवों की तरह से तरफ से तो शंख भीष्म पितामह ने बजाया था, लेकिन पांडवों की तरफ से पांडवों ने शंख नहीं बजाया था, कृष्ण ने बजाया था। पांडवों ने बजाया ही नहीं था। कोई नहीं कहेगा कि पांडवों ने कोई युद्ध करने के लिए शंख बजाया था कि आदिताई थे, कृष्ण ने शंख पहले बजाया था। पांच जन्य ऋषि केशो, जब कृष्ण ने बजाया तब अर्जुन ने शंख को हाथ लगाया, नहीं तो नहीं बजाया था। तो इसका मतलब जवाबदारी सारी कृष्ण ने उठाई हुई थी युद्ध की, पांडव तो केवल निमित्त मात्र थे। तो जवाबदारी सारी उसने, तो अपना कुटुंब मान के रखा था अर्जुन के रथ को, ये भीष्म पितामह कहते। और मैंने देखा, ऐसे मत समझना, मैं समझता हूं कि आपने अर्जुन के रथ को कुटुंब माना था, लेकिन मरने वाले सबको आपने उनके स्वरूप में स्थापित कर दिया अथवा उनको मुक्त कर दिया। लगता है कि आप अर्जुन का पक्षपात कर रहे थे, लेकिन मैं आज देख रहा हूं कि अर्जुन से ज्यादा भाग्यशाली मैं था कि मैंने आपका दर्शन किया था। अर्जुन को तो आपकी पीठ दिखाई दे रही थी, मरने वाले सब आपको देख के मर रहे थे, उनको तो सदगति मिल ही गई होगी, लेकिन अर्जुन तो अभी तक रह ही रहा है ना, तो हमारे को ज्यादा लाभ हुआ उससे ना। स्वरूप सबको उनका अपने स्वरूप मिल गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गए सारे लोग, जिनको जो आपको देखते हुए जिनका प्राण रणभूमि में गया था वो तो सब आपको मिले, जाकर आपके धाम ही पहुंच गए। इतना बड़ा आपने कृपा की, लगता है कि आप अर्जुन के पक्षपाती है, लेकिन आपका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, आप तो सबके समान रूप से उद्धार करते हो, ये उनका भाव है आज। तो कल तो मेरे ख्याल में कल अगर ठीक 8 से 9 बजे तक, एग्जैक्टली 9:45 की गाड़ी है, तो हमको भागना है। तो 2-3 श्लोक है, इसको पूरा करने का कल प्रयास करेंगे। हाँ, शाम को भी, हाँ तो शाम को पूरा कर सकते हैं इसको। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और गौरंगा प्रभु और उनके पिताजी और सारे प्रभु गौरंग प्रियदास और परिवार वालों का, जिन्होंने आप सबको यहाँ बुलाया और हरि कथा में भाग लिया आप लोगों ने। तो आज की शिक्षा ये ले जाइए कि मैं करता हूँ ये आस्ते आस्ते भूलने का अभ्यास कीजिए। भगवान सब कुछ करता है और हम उसके हैं, वो हमारा है, और कैसे भी हमारा देखभाल वो करेगा जिस दिन हम उसके याद करना शुरू करेंगे। जो भगवान को उठ के याद करता है, भगवान पहले उसको याद करते हैं। जो सब काम उतार के फिर भगवान को याद करता है, भगवान बाकी सबके काम पूरे करके फिर उसको, भगवान उसका काम उतार देते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद, हो गया ठीक। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछिए। हता गता